તારીખ 12/3/1994 શ્રી સમયસર ગાથા 15 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 57.
તો જ્ઞાન સામાન્ય રીતે दूसरे ऐसे ज्ञान विशेष की आंख बंद नहीं होती है, लेकिन उस पर लक्ष्य नहीं रहता है, बड़ा ध्यान नहीं रहता है, ऐसा हम कर सकते हैं?
फिर उसको निंदा भी नहीं कर सकते, उसको निंदा तो कहते हैं ज्ञान सामान्य का ऐसा चालू हो रहा है, तो फिर भी निंदा तो कहेंगे क्या? जब दूसरी चीज की ज्ञान में आती
है, ज्ञान सामान्य स्वयं निर्विकल्प रूप ही है, इसलिए तो उसको सामान्य कहते हैं, और ज्ञान विशेष स्वविकल्प रूप है, इसलिए उसको विशेष कहते हैं, तो खुद ही निर्विकल्प है।
और निर्विकल्प कौन सा होते हैं?
आत्मा में लीन हो जाता है, आत्मा में लीन होने से तो बाहर जाएगा नहीं, और बाहर में लीन होने से आत्मा में जाएगा नहीं, तो आत्मा में लीन होने के लिए कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा प्रयोग है? कि पहले ज्ञान विशेष को गौण करके ज्ञान सामान्य को मुख्य करें, ऐसे मुख्य गौण को कर ही रहे हैं, ज्ञान सामान्य को गौण करके ज्ञान विशेष को मुख्य कर रहे हैं, हम ज्ञान विशेष को गौण करके ज्ञान सामान्य को मुख्य करना है, तो ज्ञान विशेष कब मुख्य मुख्य नहीं होगा? जो मुख्य हो रहा है वो नहीं कब होगा? कि इसमें हमारा कोई सुख नहीं है, एक भी गेम में हमारा सुख नहीं है, इसलिए जहां हमारा सुख नहीं है उस पर हम ध्यान क्यों दें, इसकी मुख्यता क्यों करें? ऐसा होना चाहिए, जब तक पर में सुख है ऐसा निश्चय नहीं बदला, स्वरूप निश्चय होकर के वहां तक ऐसा आविर्भाव तिरोभाव होने की कोई संभावना नहीं, ये इसकी पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है, इसके बिना सीधा कोई काम कर सके ऐसा बंधा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अभ्यास करने से आएगा, इसका एक प्रैक्टिकल का बार बार अभ्यास होना चाहिए, वो विधि है, ये कार्य पद्धति है, निर्विकल अनुभूति होने की ये कार्य पद्धति है, इस कार्य पद्धति से अनुभव हो सकता है, ये अनुभव बहुत बड़ी चीज है ऐसा दर्शाने के लिए, तो मुकुंद आचार्य देव ऐसा कहते हैं कि ये समस्त दिनशासन है, ये पूरा दिनशासन है, इसकी कीमत कुछ कम नहीं है, पूरे दिनशासन से इसकी कीमत कुछ नहीं है, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट व्रत, उत्कृष्ट 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 में उत्कृष्टता और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट सभी प्रकार के जो चारित्र के भंग भेद हैं वो जिसमें समाविष्ट है, ऐसा शुद्धोगियों में नमस्कार करता ऐसा क्या है, क्योंकि ये समस्त दिन शासन है, इतना इतनी बड़ी वैल्यू है, तो ऐसा महान कार्य के लिए हमें कितना सावधान होकर के ये काम करना चाहिए, ये बात तो होनी चाहिए, ये विषय तो प्रयोग का है, सिर्फ न बातों का है न विचार का भी है, ये विषय विशाल ज्ञान में इतना गम्य नहीं होता है जितना अनुभव प्रैक्टिकल ज्ञान में गम्य होता है, इसलिए सही रूप से समझने के लिए उसका प्रयोग चालू कर देना चाहिए, और वो भी क्रम से आगे बढ़ कर गए सीधा नहीं होगा,
अगर सही बात
शीघ्र करना चाहिए, ये तो आना चाहिए, शीघ्रता से ये काम करना चाहिए, ऐसा तो आना ही चाहिए या होना ही चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा नाम है तो इसमें देरी क्यों। एक बार्गेन करने में, एक सौदा में 50 लाख मिलता हो तो हम देरी करते हैं क्या? करेंगे देरी? आत्मा जाने दो, कल विचार करेंगे, इसका कल विचार करेंगे, आज दूसरा काम है हमको, ऐसा करते हैं। सब काम को छोड़ करके प्रायोरिटी देते हैं, देते कि नहीं देते हैं। बनिए हैं हम लोग कैसे हैं, जितना नाम ज्यादा उतना हमारा रस भी ज्यादा है। इतना रहेगा कि जीव का स्वभाव है, ऐसा जीव का स्वभाव है। मैं तो कहीं तुम्हारे से नहीं हो गया है तो तुम्हारे का कैसे है? कुछ लोग प्रत्यक्ष समागम को गौण करके शास्त्रीय स्वाध्याय को मिटा देते हैं, तो कितना बात होना है कि एक गैया चलाने वाला जो रवाली होते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, उसको भी दर्द होता है तो वो किताब खरीदने को नहीं जाता, दवाई के स्टोर पे नहीं जाता, डॉक्टर के पास जाता है। मेडिकल बुक्स भी मिलती है बाजार में, मेडिसिन भी मिलती है और डॉक्टर भी, तीनों दुकान लगी हुई है, लेकिन गवार भी इतना भूल नहीं करता है कि सीधा डॉक्टर के पास जाता है, दो दुकान पर नहीं जाता है, पहले दुकान आएगी तो भी नहीं जाएगा। क्या कारण है इसका? तो कौन सा किताब मुझे पढ़ना चाहिए और किताब में से किस भाग को मुझे पढ़ना चाहिए तो मुझे मालूम नहीं है, पर सारा मेडिकल स्टोर में कौन सी दवाई खरीद करके खाना चाहिए, कितनी खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, वो भी मुझे पता नहीं है। तो उतनी बुद्धि तो गवार को भी होती है, जबकि हम शास्त्र पढ़ लेते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन को इतना स्थान नहीं देते हैं। ये जो है परिस्थिति, हमें कितने भी बुद्धिमान हो लेकिन उसकी डिग्री कितनी है उसको सचिव करती है।
बदलने से गाड़ी पास हुई, पास हुई इतने ध्यान में आता है तो ऐसा हिंदू धर्म का सम्मेलन का आज के टाइम की बात शुरू हुई, समय सम्मेलन का काल है, समय बदल से गाड़ी पास हुई ऐसा ऐसा बाकी रह जाता है क्या? नहीं रहता, बिल्कुल नहीं
रहता। तो दो की बात करते हैं, तो दो की योग में तो दूसरा को विषय ज्ञान का हो ही नहीं सकता, एक अपना संवेदन और थोड़ा आगे जाके कहें तो अपना ही आनंद का वेदन, बस जो भीतर नहीं है, अंतर नहीं है, इससे आगे नहीं है, तो उससे ज्यादा कोई वहां दूसरा गेद का, दूसरा गो देव का या पर्याय देव का कोई भी प्रकार नहीं है। दूसरा गेद का तो सवाल ही नहीं है, तो बहुत दूर है। पर छद्मस्त्र के उपयोग की ऐसी स्थिति है कि उपयोगात्मक रूप से वो एक काम में एक ही गेंद को जान सकता है, पांच इंद्रिया है, फिर भी हम पांच इंद्रियों का उपयोग किया, दो इंद्रियों का उपयोग भी एक साथ नहीं कर सकते हैं, भले एक व्यवस्था सब रखते हैं, बताए खाने खाने के वक्त स्वाद भी लेते हैं, म्यूजिक भी साथ में बजता है और सुगंध जो सुगंध स्प्रे करते हैं और शादी बनी के सब समाज करते हैं और कपड़े लोटे स्वरूप के भी विषय हैं, पांचों लोग और एयर कंडीशन वगैरह जो भी पंखे लगे जो लगाते हैं उनके सभी स्पर्श के, स्वाद के, रूप के, कान के, जीत के सब विषय होने पर भी और सबको एक साथ भोगने का हमारा अभिप्राय और इच्छा होने पर भी हम दो को भी एक साथ में ज्ञान में ले सकते नहीं है, ये हमारी स्थिति है। बाहर में भी एक दो में कोई साथ में नहीं रख सकते हैं, तो अंदर में धात्मा को मेह बनाने वाले उनके उसको तो बाहर में दूसरा गे आई गई आई गई।
ज्ञान में
प्रतिबिंबित होते हैं क्योंकि वो दर्पण है, ज्ञान दर्पण जो ऐसे था तो प्रतिबिंब आता था, लेकिन इधर ऐसा हो गया तो दूसरे का प्रतिबिंब नहीं आता है। ठीक है, स्वरूप समझ हो गया, दूसरे का प्रतिबिंब भी नहीं आएगा। इसको और स्पष्ट है कि ज्ञान सामान्य में प्रतिबिंब आता है, प्रतिबिंब तो ज्ञान विशेष में आता है, ज्ञान सामान्य में नहीं आता है। तो जो उपयोग स्वरूप सन्मुख होकर के जैसा ज्ञान सामान्य वेदन है उसके साथ एकाकार हुआ, ज्ञानानुभूति जिसको कहते हैं, तो ज्ञान सामान्य उसकी अनुभूति हो ज्ञान अनुभूति, तो उसमें दूसरा ज्ञेय का प्रतिबिंब आने का अवकाश नहीं है, क्योंकि सामान्य में जो प्रतिबिंब नहीं आता है, प्रतिबिंब की पहुंच ज्ञान विशेष तक है, आत्मा में भी ज्ञान विशेष तक प्रतिबिंब की पहुंच है, इससे आगे नहीं, ज्ञान सामान्य में भी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं, दोनों में नहीं, इसलिए प्रतिबिंब भी नहीं आता। राग उत्पन्न नहीं होता है कार्य प्रकरण में, वितरकता उत्पन्न होती है इस वक्त, तो राग का भी प्रतिबिंब नहीं आएगा, तो है नहीं राग इस वक्त, वरना ये कोई ऐसा कह दो तो उतना निकट है ज्ञान और राग तो उतना निकट है, अंतर में ही है, आत्मा के परिणाम में है, उसका प्रतिबिंब क्यों नहीं आता है शुद्धोद्योग के काल में, लेकिन शुद्धोद्योग के काल में राग का उत्पन्न होना बंद हो जाता है, चारित्र गुण में वितरक आ जाते हैं, चतुर्थ स्थान के योग्य, तो इसका भी प्रतिबिंब नहीं होता, इसलिए शुद्धोग योग में कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञान सामान्य को समझना है तो एक और प्रश्न दिए जब स्थिति है तो संस्कृति के पीछे जो भी जिस कलर का जो भी वस्तु आएगा ऐसा पूरा स्फटिक देखेगा, तो जो कलर वाला स्फटिक है वो इसकी विशेष अवस्था है, और इसकी केवल जो पारदर्शकता है ट्रांसपेरेंसी वो जो है वो इसकी सामान्य अवस्था है। स्फटिक की निर्मलता में दो प्रकार की अवस्था होती है, एक जो भी दूसरी वस्तु आती है उसकी दाएं परछाएं आती है, ये भी स्फटिक की विशेष अवस्था है, तो पारदर्शकता है तो इसकी एक सामान्य अवस्था है। वैसे ज्ञान में किसी भी ज्ञेय का नहीं होना ऐसी एक ज्ञानाकार ज्ञान की अवस्था भी होती है, पर अन्य ज्ञेय का प्रतिबिंबित प्रतिभाषित होना ऐसे ज्ञान विशेष रूप से इसकी अवस्था होती है। दो प्रकार की अवस्था में अनादि से हम ज्ञान विशेष में आसक्त हो गए हैं और ज्ञान सामान्य होने पर भी चुप जा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि ज्ञान सामान्य क्या है, दूसरे को तो मालूम नहीं हो सकता, लेकिन समय सार के अभ्यास करने वाले को ज्ञान सामान्य का पता नहीं है। 45 वर्ष के समयसार सुनने पर यह प्रश्न निकलता है कि ज्ञान सामान्य त्रिकाल है या पर्याय है, देखो
सामान्य त्रिकाल
है, ज्ञान सामान्य को त्रिकाल में ले जाते हैं, दूसरे को तो पता होगा एक ज्ञान, लेकिन जो समयसार के बहुत सालों से अभ्यास करने वाले को भी ये पता नहीं है, तो भीतर में ज्ञान सामान्य को पता होगा ही ज्ञान, और पता नहीं होने पर भी मानते हैं कि हमको सब पता है,
नहीं जानते हैं, आपको सब पता
उधर तो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव दिखा रहे हैं, वहाँ अभ्यासकों को ऐसा मान सकते हैं कि त्रिका भी ज्ञान सामान्य है, उसका आविर्भाव कर रहे हैं बात के लिए। आविर्भाव मैंने पर्याय में ही आविर्भाव तिरुभाव होता है, त्रिका में तो कुछ होना नहीं होने का काल है ही नहीं, वो तो निष्क्रिय चित्त भिन्न है, है? तो उसको त्रिकाल को मान लेते हैं, समझ लेते हैं हाँ, तो ज्ञान सामान्य है, त्रिकाल स्वभाव का आविर्भाव करना प्रकट करना ऐसा मान लेते हैं, इसलिए तो पहले कलश हो गया है सभ्याचार में कि ज्ञानानुभूति है वो आत्मानुभूति है। ज्ञान के प्रकरण में निरंजन को उसका आराम दिया है, तो ये जो ज्ञान है इसका दो रूप है, ज्ञानकार ज्ञानकार ऐसा करके दिया है, स्पष्ट रूप से दिया है, सदाशुद्धि में कर दिया है। और ये विधि के विषय में यही चीज आती है, ये विषय सूक्ष्म अवश्य है, क्यों कि अभ्यास ज्ञान विशेष काम किया है, हमारे में ज्ञान सामान्य का जो वेदन है उसको ग्रहण करने का प्रयास नहीं होने से, इस प्रकार का हमारा अभ्यास नहीं होने से एक विषय अनजाना रह गया है, पकड़ में नहीं आता है, पकड़ में आ जाए तो निबड़ा होता है। ज्ञानाकार ज्ञान की अनुभूति वो ज्ञान अनुभूति नहीं, ज्ञानाकार ज्ञान की अनुभूति वो ज्ञान
अनुभूति,
ज्ञानाकार में क्या है तो उसका संवेदन रूप है, जो ज्ञान सामान्य है जिसको मात्र ज्ञान हम कहते हैं वो तो उसका संवेदन रूप है, अनुभूति रूप स्वयं ही है, पर वही आत्मा है, स्वयं से अनुभव में आता है तो वही आत्मा है। त्रिकाली माने तो क्या फर्क है, बहुत ग्रहित भी क्या हो जाएगा, क्यों तो वहां तो त्रिकाली में तो कोई क्रिया होती नहीं है, तो त्रिकाली को क्रिया वाला मान गया तो उसका आविर्भाव हुआ, उसका तिरुभाव हुआ, त्रिकाली का आविर्भाव तिरुभाव कैसे होता है, तो समझ हो गए और संवेदन को खैर दूर रहो लेकिन समझ का भी प्रयास हो जाएगा, शास्त्र पढ़ करके भी समझ का भी प्रयास हो जाएगा, और शास्त्र बोलेगा नहीं कि तो ये समझ विपरीत हो गई है, ये शास्त्र को भ्रम बताएगा नहीं, शास्त्र कैसे बताएगा कि लिखा जो सवाल है तो समझ के जो सवाल है तो नहीं कहेगा, नाम गुण की काली है उसको भी सामान्य कहते हैं, जो स्वभाव है वो आत्मा का सामान्य रूप है, इसलिए सामान्य विशेषण वहां भी लगता है पर इधर भी लगता है, तो इधर का समझ नहीं है तो उधर की बात धारणा में जो है उसको पकड़ लेगा, सही बात है, आपको समझ नहीं होती थोड़ा और स्पष्ट करने से चर्चा चली है, ठिकानी है या पर्याय है, चर्चा चली है। लास्ट टाइम तो दिखाया था प्रवचन रचना करके पहले नाथ लिए 262 नंबर के फिर दिखाया था कभी दिखाया था तो नहीं दिखाया था नहीं दिया है दूसरा भाग है समय सर गया था 26 से 68 ये 15 गाथा का पहला भाग गुजरात में उसका 3 नंबर है 252 है ने बहुत स्पष्ट किया है एकदम स्पष्ट एक पैग्राम है बात चलते हुए कोई शंका का स्थान नहीं रहे या कोई दूसरा अर्थ भी नहीं निकले दूसरा अर्थ भी प्रकार जो सामान्य वाला अर्थ भी नहीं निकले ऐसा स्पष्ट वाक्य है तो लिखावट में होता आया है बोलने में तो और स्पष्ट आया होगा क्योंकि जितना बोलने में स्पष्ट आता है उतना लिखने में आवश्यकता नहीं है ठीक है तो अपने समझ से ज्यादा स्पष्ट होता है दूसरे से थोड़ा होता है जब कोई बात सामने आती है तो समझ कैसे होती है तो ठीक है या ठीक नहीं है ऐसा एक प्रोसेस चल जाता है अगले ने तो कोई सो कही लेकिन बात कहां तक ठीक है ऐसा एक थोड़ा उस पर जो विचार चल जाता है तो ठीक लगती है तो उसने समझाया ऐसा हो पाता है वास्तव में तो समझ ने ही समझाया है दूसरों ने नहीं समझाया है अनुवाद का काम कर है थोड़ी बात मिलती है भगवान जी की वाणी चैतन्य चमत्कार जागृत हो ऐसे चमत्कारिक है सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञान के तिरुभाव से जब ज्ञान मात्र का अनुभव हो तब ज्ञान प्रगत अनुभव में आता है तीनों बात है देखो राजमिश्रित ज्ञाता ज्ञान जो पूर्व में था उसकी रुचि छोड़कर और ज्ञान की रुचि का परिणाम करके सामान्य ज्ञान का पर्याय अनुभव करने को सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञान का पूर्वभाव कहते हैं यह पर्याय की बात है ज्ञान के पर्याय में अकेला पर्याय की बात है मैंने ज्ञान के पर्याय में अकेला ज्ञान 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 का भेदन होने और सुभाषुभ ज्ञान का ज्ञान के घट जाने को सामान्य का आविर्भाव और विशेष ज्ञान विशेष ज्ञान का ज्ञान का प्रभाव कहते हैं इस तरह है की बात और इस तरह ज्ञान मात्र का अनुभव करते हुए ज्ञान आनंद सहित पर्याय में अनुभव में आता है यह सामान्य ज्ञान का आविर्भाव अर्थात त्रिकाली भाव का आविर्भाव यह बात नहीं है यहाँ सामान्य ज्ञान का आविर्भाव इन कृपा में लिया है सामान्य ज्ञान का आविर्भाव अर्थात त्रिकाली भाव का आविर्भाव यह बात नहीं है। सामान्य ज्ञान अर्थात सुभाषुभ न्याय का रहित अकेला ज्ञान का पर्याय है सुदर्शना, इसी को यह सामान्य ज्ञान कहते हैं। अकेला ज्ञान 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 का अनुभव यह सामान्य ज्ञान का आविर्भाव है। न्याय का रहित अकेला प्रकट ज्ञान सामान्य ज्ञान है। इसका विषय त्रिकाली है, कोई विषय ही है, विषय करने वाला है और इसका विषय त्रिकाली है। तो सामान्य को त्रिकाली लेना स्पष्ट किया है। सुभाषुभ को जानने वाली है, इसमें सुभाषुभ भाव का प्रतिबिंबित होता है ऐसा। तो साथ में है जहाँ तक उत्तर विशेष ज्ञान के साथ, तो उसमें उसकी अपेक्षा छोड़ करके उससे उपेक्षित हो करके ऐसी बात है। जहाँ तक इसकी अपेक्षा रहती है वहां तक विशेष का आविर्भाव छूटता नहीं है, ऐसी बात। इसका पेज नंबर है 200 कि जब ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है, तथापि जो ज्ञानी है गेव में आ सकते हैं। अज्ञानी की क्या परिभाषा कि जो गेव में आ सकते हैं, क्यों गेव में आ सकते हैं कि उसमें वो गेव अच्छा लगता है, कोई अच्छा लगेगा तो कोई बुरा भी लगता है, क्योंकि पदार्थों पर प्रकार है उनके लिए जाएगा। अच्छा लगता मैंने क्या सुहाता है, सुहाता मैंने क्या तो सुख रूप लगता है, तो उसका जो आसक्तपना है अट्रैक्शन है वो सुख नहीं। जो अज्ञानी है विनियोग में आसक्त है उन्हें वह स्वाद में नहीं आता, होने पर भी विद्यमान होने पर भी वो स्वाद में मैंने अनुभव में
बनाया।
सामान्य को तो दृष्टि का विषय बनाना भी नहीं है, यहाँ तो ज्ञान के एक पर्याय है। यहाँ तो अज्ञानी की बात चलती है कि जो अज्ञानी है तो गेय में आसक्त है, यानी गेय में सुख बुद्धि है, गेय में रस है, उसको अपना ज्ञान सामान्य का स्वाद मैंने वेदक आएगा होने पर भी नहीं आएगा ऐसा।
ज्ञानों के भी नहीं
इसका उपयोग और करें, जैसे हमारा उपयोग और जगह चला गया तो ये सुनाई भी नहीं देगा, आवाज का वाइब्रेशन तो आएगा ज्ञान के पर्दे पर, लेकिन कहेंगे कि हमने सुना नहीं है क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं था, हमारा ध्यान नहीं था। तो उपयोग तो दो तरफ जा नहीं सकता, एक ही गेम को पकड़ता है दूसरे को पकड़ सकता नहीं है। यह बात प्रगट दृष्टांत से बदलाते हैं, सरल करने के हिसाब से दृष्टांत दिया है, पर ऐसा दृष्टांत दिया है कि सभी को अनुभव गोचर हो सके। अनुभव की बात में दृष्टांत के अनुभव का लिया है आचार्य महाराज ने, देखो उसमें चक्षुइंद्रिय का दृष्टांत नहीं लिया है, रसनाइंद्रिय का दृष्टांत लिया है, दृष्टांत में भी जैसे अनेक प्रकार के शाकादि भोजनों के संबंध से उत्पन्न सामान्य रमण के तिरोभाव और विशेष रमण के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला जो लवण है उसका स्वाद अज्ञानी शाक के लोलुप मनुष्यों को आता है। क्या होता है कि उसको खारा पत्थर नहीं महसूस होता है। तीन चार कटोरे में शाक रखते हैं, तीनों में नमक तो नमक ही है, खारा खारा पत्थर चारों में एक ही है, फिर भी इसका स्वाद अलग लेते हैं, उसका स्वाद अलग लेते हैं। अगर ऐसा नहीं ले तो हम चार सब्जी क्यों बने है? अलग अलग स्वाद नहीं होता, नहीं आता तो चार बनाने के क्या कारण है? तो अलग अलग स्वाद लेना है तो खारा पन एक होने से भी हम उसको अलग अलग रूप में अनुभव करते हैं। तो वास्तविकता नहीं रही जिसमें खारापन, तो खारापन अलग हुआ ही नहीं है, उसका अलग स्वाद हो ही नहीं सकता। लेकिन जो खाने का रस है, लोलुपता है, आसक्ति है, वो तो अकेला खारापन को भूल जा करके अलग अलग रूप में महसूस करता है, अनुभव करता है। किंतु अन्य के संबंध में उनका से उत्पन्न सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरुभाव से अनुभव में आने वाला जो एकाकार अभेद रूप लवण है, उसका स्वाद नहीं आता, खारा तो अलग नजर में नहीं आता, सबके साथ मिला हुआ, इसलिए उसको सबरस कहते हैं। हमारे यहाँ नमक को सबरस कहते हैं, हिंदी में कहते होंगे मालूम नहीं है, गुजराती के अंदर उसको सबरस कहते हैं, ऐसा मीठा भी कहते हैं, हिंदी में तो मीठा मैंने जो मिठाई में आता है शक्कर जैसी मिठाई, हमारे यहाँ उसको नमक को मीठा कहते हैं और सबरस भी कहते हैं। सबरस इसमें कहते हैं जिसमें डालते हैं अगर जो नमकीन पदार्थ है उसमें नहीं डालते तो बहुत फीकापन लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो सबको रस देता है अपना, इसलिए उसको सबरस कहते हैं। तो मालूम नहीं रहता है हमारे मिलने की पद्धति है, तो उसको सबरस है, मीठा नमक है वो सबरस है, सब में डाला जाता है, तो सब में रस ले आता है, अगर वो नहीं होता है तो फिका पर लगता है, इसलिए रस को रस को बोलता है। आचार्य महाराज ने सबरस का ही प्रस्ताव दिया है। उसका स्वाद नहीं आता और परमार्थ से देखा जाए तो परमार्थ मैंने वास्तविकता है, वास्तविकता से देखा जाए तो विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण शारूप जो लवण है वही सामान्य ज्ञान के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला लवण है, उसमें तो फर्क नहीं पड़ा। लवण के क्षार समय में तो कोई खरापन में तो कोई फर्क, वही हम स्वाद कैसे लेते हैं तो हमारे स्वाद लेने की रीति में फर्क है, नमक में कोई फर्क नहीं है, ऐसे घी में कुछ फर्क नहीं है, घी जैसा है वैसा है, लेकिन घी को कैसे जानना उसमें फर्क पड़ता है। अच्छा बुरे की कल्पना करते हैं, ठीक अच्छी की कल्पना करते हैं, इस तरह की कल्पना करते हैं, ज्ञान जैसा है वैसा क्यों नहीं जानता है, इसका स्वभाव तो ऐसा है दर्पण जैसा कि जैसा है वैसा जाने, लेकिन जीव को एक व्यामोह है इसलिए वो गेह को इसके सही रूप में नहीं जान करके कुछ न कुछ उसमें कल्पना अच्छाई की बुराई की कर लेता है।
ज्ञान की विपरीत है,
ज्ञान की भी विपरीतता तो है, ज्ञान की विपरीतता नहीं होने से ज्ञान का अज्ञान तो उसको कहते नहीं, अगर ज्ञान की विपरीतता नहीं होती तो ये ज्ञान का अज्ञानत्व है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अविनाभावी रूप से वहां दर्शन हो भी है और ज्ञान का अज्ञान बना भी है और इष्ट अनिष्ट करने का राग द्वेष भी है। विपरीत मार्ग में संसार मार्ग में भी तीनों विपरीत रूप से एक साथ कार्य करते हैं और मोक्ष मार्ग में तीनों अविपरीत रूप से एक साथ काम करने लग जाते हैं, ऐसा होता है। तीनों साथ ही काम करते हैं, मिले हुए हैं, सब तीनों आपस में मिल गए हैं, ऐसे मिल गए हैं कि साथ में काम कर रहे हैं, अलग नहीं पड़ रहा है। और मुख्य ये तीनों मुख्य गुण है, संसार घुमाने के लिए भी वो तीनों मुख्य है, उल्टा चलते और मोक्ष में निर्वाण में जाने के लिए सुनता होकर के भी वो तीनों ही काम करते हैं। इसलिए इसको एक पद दिया है मोक्ष मार्ग का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारि प्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग हा ऐसा नहीं किया, एक वचन दिया है। इसको दृष्टांत दिया है, ठीक इसी प्रकार अनेक प्रकार के नियम के आकार वश के साथ मिश्रित रूप से उत्पन्न सामान्य के तिरुभाव और विशेष के आविर्भाव से अनुभव में आने वाला ज्ञान, क्या कैसा ज्ञान है अज्ञानी का, कि मिश्रित रूप से उत्पन्न है, मिश्रित रूप से उत्पन्न है, उसमें सामान्य का तिरुभाव है, विशेष का आविर्भाव है। मिश्रित रूप से मान क्या, पर प्रवेश भाव होता है ज्ञान में, जैसे घी का प्रवेश हो गया हो, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, मीठापन लग रहा है, अच्छापन लग रहा है, ऐसे प्रवेश जैसे ज्ञान में हो जाता है घी का, ऐसा नहीं होने पर भी हो जाता है, ऐसा ज्ञान होता है, ये ब्रह्म है, ये अज्ञान है, मान लेता है, ऐसा मान भी लेता है और जान भी लेता है, दोनों करता है, ऐसा जानता है तो जानने के अनुसार ही मानेगा, क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही संचार होती है, तो जाना विपरीत तो माना भी विपरीत, जाना है विपरीत तो माना भी विपरीत, ऐसा होता है। दोनों ज्ञान की होती है और ज्ञान पूर्वक संतान की होती है, निर्दोषता भी पहले ज्ञान की होती है और फिर सिद्धांत के साथ साथ हो जाती है, फिर ज्ञान पूर्वक होती है, तो ज्ञान है वो लीडर है, मुख्य है, इसलिए ज्ञान को ऊर्जता का विशेषण दिया है, बना सिद्धांत है, समता अर्मता ऊर्जता, ऊर्जता यानी अग्रता, अग्रस्थान ज्ञान का रहता है, तीनों में भी श्रद्धा ज्ञान चारित्र में भी अग्रस्थान किसका रहता है, ज्ञान का रहता है, अनंत गुणों में अग्रस्थान किसका है, ज्ञान का है, आत्मा अनंत गुण संपन्न होने पर भी ज्ञान प्रधान गुण वाला पदार्थ है, ये अनुभव प्रकाश में लिया है, ज्ञान का अपने प्रकरण पढ़ा था उनसे प्राप्त पहला स्वाध्याय किया, अब अनुभव प्रकाश में कि आत्मा में अनंत गुण है, सब में अपनी अपनी विशिष्टता भी है और सब में अपनी अपनी अनंत शक्ति भी है, सामर्थ्य भी अनंत है, फिर भी ज्ञान प्रधान गुण वाला आत्मा है, सफल प्रकाश है, दूसरे गुण जो अपने को जानते हैं तो दूसरे को भी, जब ज्ञान अपने को जानता है दूसरे को भी जानता है, ये इसकी विशिष्टता है। इसलिए तो बच्चा गए ये बात कही कि ज्ञान एकम साधन, तो अनुभूति के लिए तो मोक्ष मार्ग के लिए तो ज्ञान एकम साधन साधनादि विवचिता, साधन की विधि की मीमांसा करने में आए तो मीमांसा मैंने गहरी विचारणा को मीमांसा कहते हैं, ये वेदांत में इसका शब्द प्रयोग ज्यादा है, यहाँ पे मत चला है उत्तर मीमांसक, मीमांसक मत चला है, और इसके दो संप्रदाय उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, तो मीमांसक उसको कहते हैं, तो अनुयायी को मीमांसक बोलते हैं, तो मीमांसा में बहुत गहराई से परस्पर्श विचार ना करना उसको मीमांसा कहते हैं, फिर फूलचंद जी ने जैन तत्व मीमांसा विद्वान लोग प्रयोग करते हैं, तो साधन की या विजय के विषय में मीमांसा की जाए तो ज्ञान एकम साधनम ये पंचाध्यायी सूत्र 401 नंबर की गाथा। स्वानुभूति एक निर्दिष्ट तस्मात परमं पदम, एक स्वानुभूति का हेतु मैंने कारण होने से हम उसको ज्ञान को परम पद में ले जाते हैं, उसको परम पद कहते हैं। और हमारा समय सार गाथा गाथा पर ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र करता है, यही कारण है कि इसमें बहुत रहस्य बना हुआ है। इसको अपना साधन बनाना है, साधक होना है, उसके लिए बहुत प्रयोजन की विषय है।
चरणों में आ पड़ा